भाग तीन खंड चार स्वयं का विनाश मत कीजिए। सयादों ने कहा, यदि हम बुद्ध की शिक्षा को जैसे कि तैसे संरक्षित रखने के स्थान पर उसमें से यहाँ तक कि मात्र एक अल्प अंश भी निकाल दें अथवा हम उनमें छोटी छोटी और बातें जोड़ दें तो क्या हम शासन अर्थात धर्म को आगे बढ़ाएंगे या उसे हम नष्ट करेंगे? शिष्य ने उत्तर दिया, इससे शासन नष्ट होगा भंते। यदि शिक्षा में इस प्रकार हेर फेर होता है तो क्या वे समाप्त हो जाती हैं या उस व्यक्ति का विनाश होता है जिसने उसमें हेरफेर किया है? जिसने रद्दोबदल की है केवल उस व्यक्ति की क्षति होती है भंते। हाँ शिष्यों, यदि बुद्ध ने कहा इस तरह साधना करो तो केवल उसी प्रकार साधना कीजिए, स्वयं का विनाश मत कीजिए। कर्तव्य एवं मैत्री, पाली में मैत या मैत्ता। सयादों ने कहा, हमें अपना ध्यान रखना है, हमें अपनी संतानों और नाती पोतियों की देखभाल करनी है, स्वयं की अथवा दूसरों की देखभाल करना समाप्त कर देना बस संभव नहीं है। क्या बुद्ध ने यह उपदेश नहीं दिया था कि हमें बच्चों और संबंधियों के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा? इन दायित्वों की पूर्ति किसके अंतर्गत आती है? यह शील, पाली में शील अर्थात समुचित आचरण का भाग है। यदि आप अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करते तो क्या आपका शील पूर्ण होता है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं बनते। यदि आपका शील पूर्ण नहीं होता है तो क्या आप प्रसन्न होंगे? नहीं बनते। यदि आप स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या आप सर्वोच्च लक्ष्य की अपनी आकांक्षा को परिपूर्ण कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में प्रगति करना संभव नहीं है बनते। जब मन शांत होता है केवल तभी हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं, और जब समाधि उत्पन्न हो तो केवल तभी हम वास्तव में प्रज्ञा यानी सूझ प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का उपदेश समाहितो यथाभूतम था, अर्थात वास्तव में जो भी है उसी के प्रति पूर्ण जागरूकता। किंतु आप लोग इसके विषय में और न केवल इसके एक पहलू के विषय में अपितु सभी विभिन्न पहलुओं के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हमने जिस प्रकार उल्लेख किया है, यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम शील को पूर्ण करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम प्रसन्न होंगे। यदि हम प्रसन्न होते हैं तो समाधि प्राप्त करना सरल होता है, और वह समाधि यथाभूतम होती है, वास्तव में जो कुछ भी है। आप लोग यह सब जानते हैं। आप लोग यह कैसे जानते हैं? अभ्यास के माध्यम से। यदि आप इसलिए जानते हैं क्योंकि किसी और ने आपको बताया है तो आप केवल शब्दों को जानते हैं। यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप केवल अपने बच्चों और नाती पोतियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं करते, आप शील का अभ्यास करते हैं। ये कुशल आचरण यानी समुचित आचरण के पुण्यदायी कार्य हैं। जबकि आप समुचित आचरण का अभ्यास कर रहे होते हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि आप अपने ध्यान को नासिका रंध्रों के नीचे उस स्थान पर जहां आपने अभी अपनी उंगली से स्पर्श किया है बिना विचलित हुए केंद्रित रखें। यदि आप वैसे ही अभ्यास करते हैं जैसे कि हमने अभी बताया है तो आप समुचित आचरण परिपूर्ण कर रहे होते हैं। यदि आप अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं तो आप क्या अभ्यास करते हैं? भन्ते विद्या, पाली में विद्या का अर्थात समझ का। मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि आपको अभी कुछ अन्य कार्य करने हैं और बाद में जब आप कार्य मुक्त होंगे तब आप यह करेंगे, किंतु हमें वास्तव में इसका सामना करना होगा। हमें इसे ठीक उसी तरह स्वीकार करना होगा जिस तरह बुद्ध ने हमारे लिए इसे समझाया था। हम समझेंगे कि यदि हम यह अर्थात अपने दायित्वों की पूर्ति करते हैं तो यह व्यर्थ में नहीं होगा, परंतु यदि हम यह नहीं करते हैं तो हमारा मन अस्थिर रहेगा। यदि आप इतना जानते हैं तो आप पर्याप्त जानते हैं, आपका चित्त शांत होगा, और यदि आपका चित्त शांत होता है तो आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा करना भिक्षुओं के लिए सरल है क्योंकि उनके लिए चिंता करने की कोई अन्य बात नहीं होती, किंतु आपको अपने बच्चों और नाती पोतियों के लिए विचलित होना पड़ता है। क्या आप कभी कभी इस प्रकार नहीं सोचते? हम प्रतिदिन इस प्रकार सोचते हैं भन्ते। बुद्ध के शिष्यों ने एक ही साथ समुचित कार्य एवं समुचित सूझ या समझ का अभ्यास किया। यही प्रयास या परिश्रम है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ भी फलीभूत नहीं होगा। यदि आप प्रयास करने पर जोर देते हैं तो सभी बातें समझ में आ जाएंगी। यदि आप यत्नपूर्वक समुचित प्रयास करते हैं तो किसी को भी आपका विरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भन्ते, मुझे यह बताइए कि यदि कोई बच्चा रो रहा है और हम उसके लिए एक गीत गाते हैं तथा बच्चा पुनः मुस्कुराता है, तो इस स्थिति में क्या गीत गायन समुचित आचरण है? आप एक गीत गाते हैं क्योंकि आप गाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या बच्चा आनंदमय होने के कारण रो रहा है अथवा कष्ट के कारण? कष्ट के कारण भन्ते। उसकी व्यथा आपकी देखरेख में कमी के कारण ही है। यदि वह रो रहा है तो यह आपका दायित्व है कि आप उसे प्रसन्न करें, बस इतना ही। क्या यह बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि वह बुरा है, या क्योंकि वह रोना चाहता है, या क्योंकि वह प्रसन्न है, या क्योंकि वह व्यथित है? क्योंकि वह व्यथित है बनते। क्या वह अपने माता या पिता से कुछ चाहता है कि वे उसकी सहायता करें? हाँ बनते, उनमें से कोई एक। तो आपको बस इतना करना है कि धीरे धीरे आप बच्चे को संतुष्ट करें। यदि आप इस प्रकार नन्हे मुन्ने की सहायता कर सकते हैं तो क्या आप प्रसन्न होंगे या दुखी होंगे? यदि मेत्ता अर्थात करुणामय प्रेम का भाव विद्यमान है तो हम एक अच्छा कार्य करते हैं भन्ते। यदि आप प्रसन्न हैं तो बच्चे का रोना घटेगा। इतना ही नहीं, वह मुस्कुराना प्रारंभ कर देगा। शिष्यों, यही सही आचरण है। जब बच्चा फिर से हंस रहा होता है तो क्या उसकी माँ या उसके पिता या उसके दादा दादी फिर भी दुखी रहेंगे? वे अत्यंत प्रसन्न होंगे भन्ते। किंतु भन्ते, यह तो वेदयित सुख है, सुखद संवेदनाओं का, इसलिए अकुशल है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप बच्चे को प्रसन्न करने की इच्छा से कार्य करते हैं तो यह मेत्ता है। अन्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। इस विषय में आप मुझसे अधिक जानते हैं। आप हमें उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मैं इसके बारे में बहुत नहीं जानता, किंतु फिर भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले श्रीलंका में एक गाय माता अपने छोटे बछड़े से अलग हो गई। आपको क्या लगता है कि यह गाय विरह से प्रसन्न थी या दुखी थी? मुझे लगता है कि वह बहुत दुखी थी। और बछड़े का क्या, वह भी बहुत दुखी होगा भंते। यह गाय अपने बछड़े की तलाश में निकली। उसने प्रत्येक स्थान पर देखा, बछड़ा भी माँ की तलाश कर रहा था। अंततः वे एक दूसरे से मिले और मिलते ही भाव विहोर हो गए। इसके पहले नन्हा बछड़ा भूख से रो रहा था। गाय भी अपने बछड़े के लिए तीव्र लालसा के कारण रो रही थी। क्या आपको लगता है कि वे आनंदमय एवं प्रसन्न थे? यह दुख है बनते, और दुख हमें रुलाता है। और अंततः जब वे एक दूसरे से मिले तो क्या वे मुस्कुराए? चूंकि वे दुखी हो गए थे वे रोए बनते। जब उन्होंने एक दूसरे को पाया तो परस्पर बातचीत की, और उसके बाद ही माँ अपने भूखे बछड़े को वात्सल्यपूर्ण हृदय से दूध पिला सकी। शिष्यों, यह मेत्ता है। मेत्ता जो एकाग्रता होती है, अपने बछड़े के लिए प्यार के अतिरिक्त उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं था। उसी क्षण एक व्याध ने उस पर एक भाला फेंका। क्या इस कहानी में उस भाले ने उसे वेधा? मनते, वह उसे नहीं वेध पाया। वह उसे नहीं वेध पाया, यह सत्य है। आप सुन रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कि मेत्ता से प्राप्त होने वाले इन लाभों के, इन हितों के विषय में गाय को पता था? मनते, वह उनके बारे में नहीं जानती थी। चूंकि वह इन बातों को नहीं जानती थी, तो क्या वह मेत्ता विकसित करने में असमर्थ थी? वह मेत्ता का अनुशीलन कर रही थी बनते। चूंकि उसमें यह मेत्ता थी, अतः वह इस भाले द्वारा मारी नहीं जा सकी। यदि आप एक भाला फेंकते हैं तो आप इसे जान से मारने के लिए फेंकते हैं, और इस शिकारी के पास बहुत तेज धार वाला भाला था। चूंकि यह गाय मेत्ता से भरी हुई थी, ऐसा लगता है कि उसने केवल एक नन्ही सी ताड़ की पत्ती की चुभन जैसा अनुभव किया। यदि आप एक गाय पर एक ताड़ की पत्ती फेंकें तो क्या वह मांस को गहराई से बेधती है? क्या होता है? ताड़ की पत्ती गाय से टकराकर गिर जाएगी बनते। हाँ, आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह भाला वैसे ही टकराकर गिर गया, जैसे कि वह एक ताड़ की पत्ती हो। आप सब मेत्ता से भरे मन के लाभों एवं हितों के विषय में जानते हैं। आप इन सब का विवरण दे सकते हैं, किंतु हम नहीं दे सकते बनते। आप निसंदेह दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन उत्कृष्ट आर्य लोगों ने, जो मेत्ता एवं करुणा के स्वामी हैं, विस्तार और संक्षेप दोनों में आपको मेत्ता से लाभ को समझा दिया है। आप सभी इसमें पारंगत हो गए हैं। किंतु आइए हम भाले और उस जैसी वस्तुओं के विषय में बात नहीं करते हैं। आइए हम केवल एक नन्हे से मच्छर का उदाहरण लेते हैं, जो अपना छोटा सा दंश आप में चुभाता है। क्या वह आपकी त्वचा को बेधेगा या नहीं? जहाँ तक मेरा प्रश्न है भंते, वह भेजेगा। आप उसे मेहता भेजेंगे क्या नहीं भेजेंगे? मेहता देना ऐसी बात है जिसे मैं केवल अपने मुख से ही करता हूँ भंते। तो जब एक छोटा सा मच्छर आपको काटता है तब क्या होता है? वास्तव में मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता भंते। यहाँ अन्य सभी लोगों के समक्ष इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ रहा है तो मैं कुछ लज्जित हो रहा हूँ भंते। सामान्यतः मैं मच्छर को मारकर उसे झाड़ देता हूँ, किंतु आप निर्द्वेष का अभ्यास करते तो हैं क्या नहीं करते? मेरा निर्द्वेष बहुत ठीक नहीं है भंते, मैं बस उसे मार देता हूँ। इसे मेत्ता भेजना कहते हैं, है ना? क्या मेत्ता का अभ्यास करना कठिन है? मेत्ता याद रखना भंते हम लोगों के लिए यह बहुत कठिन है। रुकिए, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, आप क्या कहेंगे? श्रेष्ठतर कौन है, एक मनुष्य या एक गाय? गायों की तुलना में मनुष्य अधिक श्रेष्ठतर होते हैं भंते। क्या वास्तव में पार्वी के विषय में क्या है? क्या आप कहेंगे कि एक मनुष्य में किसी गाय की तुलना में अधिक पार्मी है? हम अपनी पार्मी के कारण मनुष्य बने हैं भंते। बेचारी गाय कुछ भी नहीं समझती, किंतु आप मेत्ता भेजते हैं। सब्बे सत्ता अवेरा होन्तु, सभी प्राणी शत्रुता से मुक्त हों, ऐसा पाठ करते हैं। गाय ने अभी अपने नन्हे बछड़े के लिए मेत्ता का अनुभव किया और यही कारण है कि उसे भाला नहीं लग पाया। आप इसे स्पष्ट रूप से गहराई में समझते हैं और आप इसे दूसरों को समझा सकते हैं भंते। हम समझा नहीं सकते। हाँ हाँ, आप इसकी व्याख्या करने में सक्षम हैं। अच्छा, निम्न कोटि के जीवों जैसे गाय बैल इत्यादि में कौन पारमी से संपन्न नहीं है? श्रेष्ठतर कौन है, नर या मादा? दोनों एक समान हैं भंते। यदि हमें यह तय करना हो कि इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है तो आप किसे चुनेंगे? बैल अधिक शक्तिशाली होता है भंते, तो वे दोनों एक समान नहीं है। वृषभ नेता होता है भंते, गाय नेतृत्व नहीं कर सकती। हम अभी मात्र एक गाय के विषय में बात कर रहे हैं, है ना? और फिर भी यह अर्थात मेत्ता की उच्च शक्ति उसके लिए संभव थी। वह यह कर सकती थी क्योंकि वह एक माँ थी। हमने अपने मन को मेत्ता के लिए उस सीमा तक कभी एकाग्र नहीं किया है भंते। यदि मैं कहूँ कि इस आधार पर गाय मनुष्य से अधिक प्रसन्न है तो आप क्या उत्तर देंगे? इस उदाहरण में गाय का मन बहुत स्वच्छ है भंते। क्या आप इससे सहमत हैं जो इस शिष्य ने कहा, हम उतने विकसित नहीं हैं जितनी कि यह गाय है? क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? आप अन्य लोग, संभव है कि आप इसे न स्वीकार करना चाहें। मैंने जो कुछ भी कहा है उसके लिए केवल मैं ही उत्तरदायी हूँ भंते। मैं नहीं जानता, जब मैं इस सभा से बाहर निकलूँ तो संभवतः वे मेरी पिटाई करें। ये केवल मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। तो कौन अधिक प्रसन्न है? हमें यहीं इसे छोड़ना पड़ेगा भंते। अच्छा, यदि मैं कहूँ इस शिष्य में एक गाय जितनी भी समझ नहीं है तो क्या आप उससे सहमत हैं? मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है भंते, किंतु चूंकि यह सत्य है मुझे इसे स्वीकार करना होगा। यदि मैं आपको शिष्य जो एक गाय के बराबर है कहकर संबोधित करूं तो क्या होगा? यह थोड़ा बेहतर है भंते, इसमें मैं कम से कम एक गाय के समान स्तर पर हूं। उसकी मेत्ता के कारण गाय को भाला नहीं चुप पाया, आपका क्या होगा? क्या वह वर्षा आपके शरीर में प्रवेश करेगा? संभवतः करेगा भंते। तब क्या हम यह कह सकते हैं कि आप गाय के बराबर हैं? यह सत्य है कि आप सभी में पारमी हैं। तब आप में कमी किस बात की है? आप में प्रयास, वीर्य, पाली में वीर्य की आवश्यकता है। क्या आप सुन रहे हैं? प्रयास क्या होता है? इसका अर्थ मैं काम करूंगा निर्धारित करना होता है। इस दृष्टिकोण के साथ कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, आपको प्रयास की, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप निसंदेह यह जानते हैं, यदि आप यह दृढ़ संकल्प लें, मैं उतना प्रयास स्थापित करूंगा जो बुद्ध के शिष्यों के प्रयास के समान हो, तो क्या आपको कठिनाई होगी? यहाँ तक कि एक गाय भी यह कर सकती है। बुद्ध की शिक्षा है, किंतु गाय को उन्हें जानने की आवश्यकता नहीं थी। गाय को बुद्ध की शिक्षा का ज्ञान नहीं था। मुझे बताइए कि क्या वह अस्तित्व के एक अच्छे लोक में उत्पन्न हुई थी? वह नहीं हुई थी बंते। मेत्ता के माध्यम से उसका मन एकाग्र था। यदि हम उसी प्रकार अभ्यास करें तो क्या हम इस गाय से भी अधिक शांत नहीं हो जाएंगे? यदि हम आवश्यक शांति प्राप्त कर लें तथा उसे बनाए रखने में समर्थ हो जाएं, तो क्या हम समुचित व्यवहार करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे? एक बार कार्य की शुद्धता स्थापित हो जाए तो हम नासिका रंध्रों के पास श्वास के स्पर्श की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार क्या हम समझ, सूझ या प्रज्ञा प्राप्त करने की और अपनी जागृति की आकांक्षा पूरी नहीं कर सकते?